ಕೇತನ ಮನೋಸ್ತಾಪಿತಾಮೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ಬಡಕರ್ ತುಮಾರೇ ಲಿ ಅನ್ಯ ಕೋಯ್ ಕಾರ್ಯ ನಹೀ ಹೈ ತುಮೆ ಸಂಕೋಚ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಕೋಯ್ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಹೀ ಹೈ ಹೇ ಪಾರ್ಥ ಸುಖಿಯ ಬಸ್ತೆ ಹೇ ಪಾರ್ಥ ವೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸುಖಿ ಹೈ ಜಿನ್ಹೆ ಐಸೆ ಯುಗ ಕೆ ಅವಸರ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತೆ ಹೈ ಜಿಸ್ಸೆ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಕೆ ದ್ವಾರ ಖುಲ್ ಜಾತೆ ಹೈ किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपने यश खो दोगे अपना यश खो दोगे। श्लोक संख्या 34 लोग सदैव तुम्हारे अभ्यर्थ का वर्ण करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अभ्यर्थ को मृत्यु से भी वर्ण करेंगे। श्लोक संख्या 35 जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि में छोड़ दी है युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। श्लोक संख्या 36 तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का भाव करेंगे तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। श्लोक संख्या 37 हे कुंती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ खड़े हो और युद्ध करो और याद करो हम लोग पढ़ रहे सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जय अजय ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापं आवाप्स्यति सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यति सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व ಪಾಪಮಾಪ್ಸ್ಯತಿ ಸುಖ ದುಃಖೇ ಸಮೇ ಕೃತ್ವಾ ಲಾಭ ಲಾಭೌ ಜಯಾ ಜಯೌ ತತೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಏವಂ ಪಾಪಮಾಪ್ಸ್ಯತಿ जो पुरुष भक्त बोले और सौ माताएं बोले आता है। सुखे नहीं है, सुख दुखे, सुख है सुख, सुखे नहीं है सुख, सुख लिखा नहीं है। दुख में समय सम भाव से कृत्वा करके लाभ अलाभ लाभ तथा हानि दोनों जय अजय विजय तथा पराजय दोनों तथा तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए युद्धस्व लगो लड़ो न कभी नहीं एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। अनुवाद और तात्पर्य सुनने से बताऊं तुम सुख या दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि ये उनकी इच्छा है। कृष्ण भावना मृत के कार्यों में सुख या दुख हानि या लाभ जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो ये होगी कि हर कार्य कृष्ण के निर्मित किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई तत्वगुण या रजगुण के अधीन होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना मृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है सामान्य कर्म करने के लिए समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11:5:41 में कहा गया है देवर्षि भूतात् ऋणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरणं गतो मुकुन्दं परियुक्त कर्तम्। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की ग्रहण कर लिया है वह ना तो किसी का ऋणी है ना किसी का कृतज्ञ है। चाहे वे देवता साधु सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और स्पष्टता से की जाए। अध्याय का शीर्षक है गीता व्यवस्था। हमने श्लोकों का विभाजन किया था और पहले जो 10 श्लोक थे उसमें अर्जुन ने अपनी और शंकाएं प्रस्तुत की थी भगवान कृष्ण के सामने। युद्ध ना करने के कई तर्क प्रस्तुत किए गए थे। उसके अलावा श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 तक ज्ञान की चर्चा हुई है जिसमें परम भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि आत्मा अमर है अजर है और शरीर को कभी बचाया नहीं जा सकता है, शरीर नश्वर है। और उसके बाद फिर अब जो चर्चा चल रही है आज श्लोक संख्या 31 से लेकर 38 तक कर्म कांड के बारे में चर्चा कर, यानी कि कर्म कांड की चेतना में कार्य करने से क्या होगा। कृष्ण ये बता रहे हैं कि अगर युद्ध करते हैं तो भौतिक लाभ होगा युद्ध करने से, यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अपयश और पाप लगेगा अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। तो ये चर्चा हो रही है इस श्लोकों में श्लोक संख्या 31 से लेकर 38 है। अब आगे श्लोक संख्या 39 से लेकर 53 में बुद्धियों की चर्चा की जाएगी भगवान के द्वारा, और आखिर के जो श्लोक हैं श्लोक संख्या 72 तक, 54 श्लोक से लेकर 72 श्लोक तक समाधि की चर्चा हुई है। तो आज ये श्लोक लिया जा रहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापम अवाप्स्यति। अर्थात तुम सुख या दुख हानि या लाभ विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो भगवान यहां पर एक हल दे रहे हैं श्लोक में कि ऐसी मनस्थिति, यानी ऐसे मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें यानी कि युद्ध करने पर भी पाप नहीं लगे, ऐसा भगवान ने यहां पर बता रहे। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया था कि अगर वो युद्ध में पराजित युद्ध में अगर मारे जाते हैं तो सब लोग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत जाते हैं साम्राज्य प्राप्त होगा, राज्य का सुख उपभोग करेंगे वो। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने ये अलग अलग रास्ते बताए हैं, अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि वो युद्ध करें, उनको युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं भगवान कि आप अगर युद्ध करोगे, अगर आप लड़ोगे, अगर आप जीवित हो साम्राज्य की प्राप्ति कर लोगे, अगर विजय प्राप्त होगी आप, और अगर आप देह त्याग देते हो युद्ध भूमि में तो आपको सब लोग की प्राप्ति होगी, चिंता की क्या बात है। तो यानी कि आपको पाप नहीं लगेगा, आपको तो सब लोग की प्राप्ति होगी। लेकिन अर्जुन का कहना क्या है, अर्जुन को जो बताया जा रहा है तो अर्जुन जो है बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रहे हैं। अर्जुन को इस बात से अर्जुन बात से सहमत नहीं है कि वो युद्ध है, क्योंकि अर्जुन का विचार ये है कि अगर वो युद्ध करेंगे तो पाप नहीं, क्योंकि उनके समक्ष स्वजन के खड़े हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, उनके भाई बंधु हैं, उनके रिश्तेदार सारे खड़े हैं, स्वजन खड़े हैं, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा तो मैं युद्ध क्यों करूं, मैं तो युद्ध करना ही चाहता, मुझे ना साम्राज्य चाहिए ना सब लोग चाहिए। यानी बिल्कुल जैसे एक प्राकृत भक्त होता है, गुरु की शरण ले ली है, इस अध्याय में ही हमने जैसे पहले ही बताया था कि अर्जुन कह रहे भगवान को कि मैं अब आपका शिष्य हूं, मुझे आप उपदेश दीजिए, अपनी कृपणता दुर्बलता के कारण मैं उलझन में पड़ गया हूं, अब आप मुझे उपदेश दें। स्वीकार कर लिया उन्होंने भगवान को गुरु के रूप में, लेकिन फिर भी युद्ध करने के लिए उठा, यानी दीक्षा हो गई गुरु से लेकिन सेवा करने के लिए तैयार नहीं, हम नहीं प्रचार में जाएंगे, नहीं हम लोग मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं प्रचार बांटेंगे, नहीं हम नहीं ग्रंथ बांटेंगे, नहीं हम मंदिर की सफाई नहीं करेंगे, हम अर्चन वगैरह की सेवा पूजा नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि क्या लगता है कि सारे जो कर्म लगते हैं कृष्ण भावना भावित जो कर्म है वो देखने में क्या लग रहे हैं, साधारण कर्म लग रहे हैं। इसलिए सुख और दुख की चिंता हो रही है, ऐसा ना हो कि मुझे प्रचार में भेजा जा रहा है, वहां पता नहीं क्या होगा, वहां मुझे दुख प्राप्त हो सकता है, सुख प्राप्त हो सकता है, लाभ होगा या हानि होगी, इस प्रकार की कई तरह की चिंताएं होती हैं। एक प्राकृत भक्त में ये सारी चिंताएं होती हैं, किस कारण से, कारण क्या है इसका, श्रद्धा की कमी के कारण। श्रद्धा की कमी के कारण जो है भगवान का जो उपदेश है, गुरु का जो उपदेश है, उसे विश्वास नहीं है, इसलिए आदमी यहां विचार कर रहे हैं कि मैं युद्ध किसके लिए करूं, युद्ध करने से क्या लाभ मिलेगा मुझे, मुझे सौ लोग नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना। तो भगवान जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं, भगवान जो है अलग अलग तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद ने 4 सितंबर 1973 को प्रभुपाद ने लेक्चर दिया था लंदन में इसी श्लोक पे। प्रभुपाद ने यही बताया था कि वास्तव में असली भगवद गीता यहाँ से प्रारंभ होती है, इस श्लोक से, सुख दुखे समाप्त। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक से प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविक भगवद गीता प्रारंभ हो रही है, क्योंकि अब जो बताया जा रहा है भगवान के द्वारा, ये बातें जो है भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहीं ना कहीं सभी अध्यायों में इस प्रकार की बातें करेंगे और अंतिम अध्याय तक करते रहेंगे। जिसको भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। क्यों? अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनको पाप नहीं है, इस कारण से भगवान ने ये बात दोहराते रहे, किसी को समझाने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए, और किसी को आप अगर इंस्पायर करना चाहते हैं तो कई बार होता है एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है, इसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग, है कि नहीं? तो ये तो शिक्षा का एक शिक्षा की परिपाटी है, शिक्षा इसी तरह से दी जाती है बचपन से ही, बच्चों को भी एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है। अगर वो बच्चा नहीं समझता है तो समझ जाए तो ठीक है। तो क्योंकि कलयुग में अधिकांश लोग मंद बुद्धि के हैं, भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन जिस तरह से बातें कर रहे हैं या अर्जुन जिस तरह से विचार प्रकट कर रहे हैं, कलयुग में भी इसी तरह से बद्ध जीव जब भक्त बनने का प्रयास करेंगे वो भी इसी तरह की बातें करेंगे कि हम ये सेवा नहीं करेंगे, वो सेवा नहीं करेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, नाना प्रकार के तर्क प्रस्तुत करेंगे सेवा ना करेंगे। तो क्योंकि भक्त क्या सोचता है, कई बार प्राकृत भक्त क्या सोचता है कि शायद इन सेवाओं में कोई बंधन है, इस कारण से वो आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता, है कि नहीं? पहले तो हम प्रचार करते थे बड़ा अच्छा लगता था, अब हमें मंदिर संभालना है, ये नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि ये सेवाओं के द्वारा हम कहीं फंस ना जाए। और अर्जुन क्या सोच रहे हैं यहां पर, अर्जुन कभी इसी तरह का भाव है, अर्जुन कभी ये विचार है, कोई युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उसे वो सुख और दुख देख रहे हैं, उसे लाभ और हानि देख रहे हैं, उसे जय और पराजय देख रहे हैं, पाप की चिंता है। और इसी तरह से 11 दिसंबर 1968 में लॉस एंजलिस में प्रभुपाद ने प्रवचन देते हुए उन्होंने यही बात बताई थी कि व्यक्ति को बिना लाभ हानि के विचार किए हुए कर्तव्य करना चाहिए। अब ये नहीं सोचना है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी, हमें तो केवल ये देखना है कि कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है, कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है, कोई मुझे करना है। यानी कि जिससे गुरु प्रसन्न हो, जिससे भगवान प्रसन्न हो, वही सेवा जो है शेष सेवा है। और भौतिक जगत में पाप और पुण्य क्या, भौतिक जगत में सब कुछ ही वास्तव देखा जाए पाप। पुण्य का मतलब क्या होता है, जन्म है शरीर सुंदर सी भेड़िए है पुण्य, कुंती महारानी कह रही है, और उसमें मत होता है एक माना मधा पुराण, उसमें भी मन है, उसमें इंटॉक्सिकेशन है, उसमें भी जो है घर गर्भित हो जाता है व्यक्ति, अच्छे कुल में जन्म लेके सुंदरता प्राप्त करके, धन प्राप्त करके, विद्वत्ता प्राप्त करके, ये है पुण्य कर्म। और क्या है, निंदित कर्म क्या है, यह पाप कर्म क्या है, अधम परिवार में जन्म होना, निकृष्ट परिवार में जन्म होना, कुरूप होना, धन का भाव, गरीबी और अनपढ़ अशिक्षित रहना, या फिर पशु योनि में जाना, निकृष्ट योनियों में जाना, ये सब पाप कर्मों का फल है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, कोई अगर पुण्य कर्म करके अच्छे परिवार में जन्म लेता है, या जन्म लेने से पहले माता के गर्भ में रहता है, वो पुण्य करके जन्म लेने वाला है या पाप करके जन्म लेने वाला है, दोनों को ही माता के गर्भ में 9 महीने का सुखाना मिलता है। आप पुण्य करो या पाप करो, आप पाप करिए या पुण्य करिए, रास्ता तो वही है बाहर आने का, यानी इक्का उठा के आना पड़ेगा। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता हुआ बाहर आ, बहुत बुरले होते हैं ऐसे बच्चे जो हंसते हुए आएंगे बाहर, शायद कोई नहीं होता, शायद ही कोई होगा जो माता के गर्भ से बाहर निकलने के बाद हंस रहा हो, ऐसा होता है। मान लीजिए आप किसी कमरे में गए हंसते हुए और बाहर आ रहे रोते हुए, क्या है कि अंदर कमरे में कोई गड़बड़ हुआ। तो इसी तरह से आप माता के घर में जाते हैं, 9 महीने रहते हैं, तो बाहर जब निकलते हैं तो कितना कष्ट होता है, क्योंकि अंदर का वातावरण जो है आपके लिए ठीक नहीं था। तो ये तो कोई निंदित जन्म हो, पाप कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ जन्म हो, या पुण्य कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ जन्म हो, दोनों की एक ही अवस्था है जन्म लेने की। ये तो केवल एक धर्म है कि कोई अच्छे परिवार में जन्म लिया, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बोलते ना बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, आई वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, कि हाथ में मेरे क्या था, चांदी का सिल्वर का चम्मच था जब मैंने जन्म लिया। सिल्वर का चम्मच तो बाद में आएगा, लेकिन पहले तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा सिल्वर के चम्मच को प्राप्त करने से पहले, कितना जो है भारी भरकम जो है आपको भुगतान करना पड़ेगा आपको सिल्वर स्पून प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार जो है आगे एक और जगह प्रभुपाद ने प्रवचन बताया 4 सितंबर 1973 लंदन में ही, यानी कि इस जगत में द्वंद है संसार। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुख भी है और दुख भी है, लाभ भी है हानि भी है, दिन भी है रात भी है, सर्दी भी है गर्मी भी है, द्वंद से भरा हुआ ये संसार, ये सापेक्ष जगत है। पिछली बार उन्होंने बताया था कि रिलेटिव वर्ल्ड है, एक थ्योरी इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिलेटिविटी। अब ये लॉ जो है ये साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, ये लॉ पहले से एग्जिस्ट करता है, डिस्कवर जरूर किया। जैसे बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है न्यूटन ने डिस्कवर जरूर किया है बट इन्वेंट नहीं किया। तो गॉड्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। तो इसी तरह से लॉ ऑफ रिलेटिविटी है कि भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है, और वैज्ञानिक लोग जो है उसको बोलते हैं हमने ढूंढा। तो यानी कि वैज्ञानिकों के कहने से पहले ही सेल गिरता था पेड़ से, वैज्ञानिकों के कहने से पहले सेल गिरता नहीं गिरता था पेड़ से, जब सेल पक जाता है तो गिरेगा, तो पेड़ से तब भी गिरता था, आपके कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता। तो द्वंद तो संसार में पहले से ही है, आप कहें या ना कहें, आप कहें या ना कहें, द्वंद तो पहले से संसार है। यानी कि एक बात को साबित करने के लिए, एक वस्तु को, एक व्यक्ति को साबित करने के लिए कि ये क्या है, उसके लिए किसी अन्य शब्द या किसी अन्य वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। रात को साबित करने के लिए आपको दिन की जानकारी होनी चाहिए, सुख की व्याख्या करने के लिए आपको दुख के बारे में पता होना चाहिए। जिसने दुखी नहीं देखा है वो सुख क्या समझेगा, सुख क्या होता है कि नहीं, और जिसने सुखी नहीं देखा है उसको क्या पता दुख के बारे में। यानी कि दुख को समझने के लिए सुख की आवश्यकता है, सुख को समझने के लिए दुख की आवश्यकता है, रात को समझने के लिए दिन की आवश्यकता है, युवावस्था को समझने के लिए वृद्ध अवस्था की आवश्यकता है। हम वृद्ध अवस्था ही नहीं देखे तो आपको कैसे पता कि युवावस्था है, क्योंकि आप देख रहे हैं वृद्ध है तो आप बता सकते हैं ये युवावस्था है। यानी इस बात को साबित करने के लिए, ये सापेक्ष सत्य है, ये रिलेटिव ट्रूथ है, इस बात को साबित करने के लिए आपको समझना होगा कि वास्तव में वृद्ध व्यक्ति कौन है। वृद्ध व्यक्ति को समझ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं हाँ ये युवक है। तो द्वंद से भरा हुआ संसार है, यानी कि अगर मान लीजिए इस संसार में अगर कोई सुख भी है तो वो भी शाश्वत सुख नहीं है, दुख भी है वो शाश्वत दुख नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो दुखी है, क्योंकि आखिर में तो जीवन तो अंत ही हो ही जाता है। फिर वो लाभ हानि का कोई मतलब नहीं है, वहां पर सुख और दुख का कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट और लॉस का मतलब कुछ नहीं है, लाइबिलिटी और एसेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर को छोड़ दिया। ये कंक्लूसिव ट्रूथ है, ये कंक्लूजन है यह असली सिद्धांत है, असली सत्य यह है। इस सत्य में कोई द्वंद नहीं है। मृत्यु, पर मृत्यु को समझने के लिए भी जन्म देखना पड़ेगा। मृत्यु को समझने के लिए आपको जन्म की अनुभूति होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं मृत्यु है। तो इस प्रकार जो सापेक्ष जगत है, ये रिलेटिव वर्ल्ड है, और उस रिलेटिव वर्ल्ड में जो है कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, किसी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में नहीं है, और सब में द्वंद भरा हुआ है। इसलिए सांसारिक जो संबंध है, रिश्ते नाते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, इन सब में द्वंद भरा हुआ है। क्यों भरा द्वंद? क्योंकि कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है। जब व्यक्ति ही शाश्वत नहीं है तो सुख कैसे शाश्वत हो सकता है? जब आप ही शाश्वत नहीं है तो, यानी कि आपके शरीर ही शाश्वत नहीं है, तो फिर सुख कैसे शाश्वत हो सकता है? तो इस प्रकार जो है भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, प्रश्न क्या होता है? प्रश्न उठता है कि हम भगवान की बात को कैसे समझें कि व्यक्ति को सुख दुख लाभ हानि तथा जय पराजय में समान होना चाहिए। भगवान की बात को कैसे समझें कि हमें जो है एकदम एक समान होना चाहिए सुख और दुख में, लाभ और हानि में? यानी कहने का अर्थ ये है इसको जरा बंद कर देंगे बैकग्राउंड म्यूजिक को, की आवश्यकता तो नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक की आवश्यकता होती है? कोई टीवी चैनल तो है नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता है साथ का, तो ध्यान भटकता है, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन एक बात है, अगर ये कहा जाए कि सुख दुख की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, लाभ और हानि की चिंता नहीं होनी चाहिए, जय पराजय की चिंता नहीं होती है होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है क्या, क्या हम सुख के लिए प्रयास न करें? प्रश्न ये होता है, क्या हम सुख के लिए प्रयास न करें? क्या हम लाभ के लिए प्रयास न करें? क्या उन्नत होने के लिए प्रयास न करें? क्या हमें एम्बिशियस नहीं होना चाहिए आपकी तरह? क्या हमें पेसिमिस्टिक होना चाहिए, पेसिमिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए लाइफ के लिए, क्योंकि सब तो सब कुछ तो खत्म होने वाला है, इतना पढ़ने का क्या फायदा, क्या आप मरने वाले हो? क्या ये हम प्रचार करने वाले भाग जाके इतना धन क्यों कमा रहे हो? आप तो शरीर छोड़ने वाले हो। ये परिवार, ये समाज, ये देश, ये डीएलएफ, ये वगैरह वगैरह जो है, इस सबकी क्या आवश्यकता है? सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो इस सबकी क्या आवश्यकता है? ये सब आड़ोपन की क्या आवश्यकता है? इतने बड़े षड्यंत्र की क्या आवश्यकता है? इतने बड़े नेटवर्क की क्या आवश्यकता है? सब बेकार, क्या SMS, क्या ईमेल, क्या इंटरनेट, क्या सब समय की बर्बादी है। तो इसका मतलब एडवांसमेंट नहीं होना चाहिए क्या? आज का जो देखते हैं कि लोग जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी में और हर तरह के इसमें फील्ड में, तो इसमें किसी प्रकार की उन्नति नहीं होनी चाहिए इस श्लोक के अनुसार? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि विजय प्राप्त होने पर हमें हर्षित नहीं होना चाहिए। अर्जुन को ये बता रहे हैं कि विजय प्राप्त होने पर आप हर्षित नहीं होना, और अगर पराजित हो जाओ तो उद्विग्न नहीं होना। ये इसका उद्देश्य, ये श्लोक का ये भाव है कि हाँ जी आज मेरे जन्मदिन है, 100 करोड़ खर्च कर दो 5 दिन के अंदर, तो आप हर्षित हो रहे हो, और लॉस हो गया बिजनेस में तो फिर आंसू बहा रहे हो, तो उसमें जो है वास्तव में आप बन जाते हैं। देखा जाए तो कर्म अपने आप में नहीं बांध रहा है, कर्म का फल आपको बांध रहा है। कर्म अपने आप में नहीं बांध रहा है, कर्म बंधन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? कर्म का फल बांध रहा है आपको, क्योंकि आपकी भावना ऐसी है कि आपने सुख अर्जित करके आप हर्ष बना रहे हो, और उसके बाद फिर नहीं प्राप्त होने पर, दुख प्राप्त होने पर आप शोक बना रहे हो, उद्विग्न हो रहे हो। तो इस प्रकार जो है जब हम लोग हर्षित हो जाते हैं, या जब शोकमग्न हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, तो फिर हमें उसमें बंधना पड़ता है, उस कर्म बंधन में बंधना पड़ता है। तो आगे बता रहे हैं, युद्धाय युद्धस्व ततो युद्धाय युद्धस्व। तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि युद्ध करो, इस प्रकार युद्ध के लिए युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, कुछ प्राप्त करने के लिए युद्ध मत करो, कि कर्तव्य समझकर युद्ध करो कि आप क्षत्रिय हो, आपका धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध के लिए केवल युद्ध करो। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद, प्रभुपाद जी उन्होंने भी युद्ध किया। ये युद्ध वास्तव में प्रारंभ हुआ था श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। संकीर्तन आंदोलन का जो युद्ध है आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के द्वारा हुआ। ये युद्ध प्रारंभ हो चुका है और प्रभुपाद जी ऐसे युद्ध में सेनापति हैं, अपने सैनिकों के साथ पूरे पृथ्वी में उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। बहुत कम समय में 11 साल की अवस्था में ही पूरे विश्व भर में ये युद्ध छिड़ गया। और बम क्या है हमारे, हमारा वेपन क्या है, हमारी बुक्स, श्री प्रभुपाद जी का ये वेपन है, इसके द्वारा हम लोग आक्रमण करते हैं। तो युद्ध के लिए युद्ध करना है, कितने ग्रंथ बांटे जाएंगे, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, इसकी चिंता ना करते हुए, लाभ और हानि की चिंता ना करते हुए, सुख या दुख की चिंता ना करते हुए हमें ग्रंथों को बांटना है। सर्दी होगी या गर्मी होगी, आंधी आएगा या तूफान आएगा, दिन होगा या रात होगा, ये युद्ध को हमें लड़ना है, माया के खिलाफ युद्ध। इसलिए प्रभुपाद जी जब काफी बीमार हो गए थे तो प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद आप ये सारी सेवाएं हमें दे दीजिए, आप मत करिए। प्रभुपाद ने कहा मैं तो कृष्ण के लिए उठा रहा हूँ, एक कष्ट जो उठा रहा हूँ, इस अधिकार को तुम मत छीनो, कृष्ण की सेवा के लिए और कृष्ण के लिए युद्ध करने का मेरा अधिकार है, इस अधिकार को आप मत छीनो। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी जो है सिखा रहे हैं किस प्रकार हमें युद्ध में भाग लेना चाहिए। और युद्धस्व शब्द के दो अर्थ बताए गए यहाँ पर, लगो तथा लड़ो। आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने दो शब्द दिए हैं, लगो और लड़ो, यानी कि युद्ध के लिए युद्ध करो। और यहां पर बताया कि युद्ध के लिए तैयार हो, युद्ध के लिए युद्ध करो तथा दूसरे अर्थ के अनुसार युद्धाय का हुआ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पहला अर्थ क्या हुआ, युद्ध के लिए युद्ध करो, और दूसरा अर्थ क्या हुआ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और आगे आखिर में शब्द क्या आ रहा है, नैनम नैवम पापम अवाप्स्यसि, यानी कि पाप लगेगा युद्ध करने से, यह अंदर चिंता है ना। अब देखिए अगर वो युद्ध भूमि में शरीर छोड़ देते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्षत्रिय होने के बाद। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे क्योंकि भगवान ने ऐसा बोला है कि सुख दुख की चिंता मत करो, लाभ हानि की चिंता मत करो, कि केवल युद्ध करो। कुछ लोग जो है इसको शायद सोचते हैं कि हम लोग किसी को मारेंगे, किसी की हत्या करेंगे, किसी पे आक्रमण करेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। तो उसको को बड़ा सस्ते रूप में लिया जा सकता है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस तरह से एक सैनिक है युद्ध भूमि में, वॉर फ्रंट में या बॉर्डर में, जब वो किसी को मारता है यानी कि अपने एनिमीज को मारता है, तो उसको सरकार के द्वारा जो है अवार्ड दिया जाता है, उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। लेकिन वही सैनिक अगर जो है अपने मन के अनुसार किसी को सड़क में मार देता है तो उसको परमवीर चक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि तो ये देखना है कि सरकार के द्वारा उसका अनुमोदन है कि नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर है कि नहीं। तो इसी तरह से भगवान की आज्ञा है कि युद्ध करो तो उसमें किसी तरह का पाप नहीं लगता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवद गीता में तो युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ये तो बेसिकली एक वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहा है ये ग्रंथ। इस तरह का आरोप लगाया गया था रशिया में जब गीता के लिए वहां पर काफी विरोध किया गया कुछ मिशनरीज के द्वारा, तो उन्होंने ये बोला कि आपका जो ग्रंथ है बेसिकली ये आतंकवाद को बढ़ा रहा है, ये हिंसा को बढ़ा रहा है भगवद गीता, इस वायलेंस को इंकरेज किया गया है। तो इसी तरह इसलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं कि युद्ध भूमि में, वॉर फ्रंट में, बॉर्डर में अगर मारा जाता है कोई, कोई अगर किसी को मारता है, एनिमी को मारते हैं जिस तरह से सैनिक लोग मारते हैं, तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता उसके लिए कि आपने इतने सारे लोगों को मार दिया, आप जाइए जेल में, उनको तो अवार्ड दिया जाता है। लेकिन अगर वही सैनिक जो है किसी को मारता है यहाँ पर किसी गली में मार दे किसी को, तो उसको वार्निंग मिलेगा, तो पनिशमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के द्वारा अगर आदेश मिलता है, भगवान के प्रतिनिधि आदेश देते हैं, तो उसी में से किसी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी का प्रकार का कर्म बंधन नहीं है। तो इस बात को हमें समझना है, इस बात को अच्छी तरह समझना है। वास्तव में भगवद गीता की शिक्षा हमारे लिए है, भगवद गीता की शिक्षा जो है हम जैसे प्राकृत भक्तों के लिए है। भगवद गीता वास्तव में लिखी गई इस तरह से है, मतलब बताया कि भगवान ने उपदेश इसी तरह से दिया है ताकि जो लोग नए भक्त जुड़ जाते हैं भक्ति में, उनको ये शिक्षा प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छी शिक्षा है इसमें। तो अब यहाँ पे पाप का अगर गहराई से अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह पर, एनी एक्टिविटी विच इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस इज सिंपल। सिंपल सी बात, कोई लंबा चौड़ा इसमें वर्णन करने की आवश्यकता। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी कार्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, या कृष्ण की सेवा में नहीं लगाना है जिसको, या कृष्ण की सेवा प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो सारा कार्य क्या है? पाप है। यानी कि कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से पाप होगा। जो कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं निश्चित रूप से उनको नरक जाना पड़ेगा, उनमें कोई संख्या नहीं। अच्छा लगे बुरा लगे। अब तीसरे अध्याय में देख लीजिए, ये जो भगवद गीता में देखिए सबसे अधिक जो चर्चा हुई है इसी के बारे में हुई है, पाप के बारे में। तो प्रभुपाद बता रहे तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, यज्ञ निष्कार से संता मुच्यते सर्व किल्बिषय भुंजते थे अगम पाप पश्यन्ते थे आत्म कारणा। जो अपनी जीवा की तृप्ति के लिए भोग तैयार करते हैं, जीवा की तृप्ति के लिए खाते हैं, वो क्या खा रहे हैं? तो बताइए कितने लोग भोग लगाते हैं दिल्ली शहर में? नहीं, आपको छोड़ के बारे में आपकी बात नहीं कर रहे, दिल्ली शहर में कितने लोग भोग लगाते हैं? सारे पाप खा रहे कि नहीं खा रहे? सब पाप खा रहे। भगवान गीता में स्पष्ट बता रहे हैं जो भोग लगाता नहीं है वो सब पाप खा रहे। तो कहने का अर्थ यह है कि स्वर्ग जाइए या नर्क जाइए, दोनों ही वास्तव में पाप का है। स्वर्ग को वास्तव में देखा जाए कर्म कांड की विधि के अनुसार कोई किसी देवता को प्रसन्न करता है और यज्ञ में भगवान विष्णु उनको आहुति अर्पित करता है, भगवान विष्णु केंद्र बिंदु बनाकर उसमें देखिए कर्म कांड के लिए करने के लिए भी, कर्म कांड करने के लिए भी उस यज्ञ में भगवान विष्णु को केंद्र बिंदु बनाना। कर्म कांड में भी भगवान विष्णु की आवश्यकता है, ज्ञान कांड में भी कर्म भगवान विष्णु की आवश्यकता है, और अष्टांग योग में भी भगवान विष्णु की आवश्यकता है, भक्ति में तो है ही। आप कर्म कांड की विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते हैं, स्वर्ग लोक भी नहीं जा सकते हैं जब तक आप भगवान विष्णु को वहां पर यज्ञ में आहुति नहीं डालेंगे। तब तक यज्ञ यज्ञेश्वर तो भगवान विष्णु है, आप किसी भी देवता के प्रसन्न करने के लिए करें लेकिन भगवान विष्णु के तो आपको यज्ञ में आहुति डालनी ही पड़ेगी। ये यज्ञ का नियम है, कोई भी यज्ञ का नियम है, कोई भी यज्ञ आप कर लीजिए उसे भगवान विष्णु का होना आवश्यक, क्योंकि वास्तव में भगवान गीता में बता रहे भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्व लोक महेश्वर, मैं ही वास्तव में सभी यज्ञ तपस्या का भोक्ता हूं। तो ये कर्मकांड की बात है, यहां पर हर वैदिक मंत्र का उच्चारण ओम से शुरू होता है और उसके बाद से किसी देवी देवता का नाम लिया जाता है। उसी तरह से फिर कोई ज्ञान का मार्ग अपनाता है उससे भी ओम शब्द का उच्चारण होता है, और ज्ञान मार्ग में लगे हुए हैं वो लोग भी मंदिर बनाते हैं, वो भी विग्रह की स्थापना करते हैं, वो पंच उपासना करते हैं। पंच उपासना मतलब मुख्य रूप से पांच देवताओं की उपासना, एक हो गए शिव जी, एक हो गए भगवान विष्णु हो गए, एक हो गए चंद्र, एक हो गए शायद गणेश जी, एक दुर्गा जी। ठीक, ये पंच उपासना उद्देश्य क्या है पंच उपासना का? इस उद्देश्य से इनकी पूजा करके इनकी सेवा करके हम जो है ब्रह्म से एकत्व की प्राप्ति कर रहे हैं, हम में और इनमें कोई भेद नहीं रह जाएगा, हम में और नारायण में कोई भेद नहीं रह जाएगा, तो हम वही हम हैं, हम वही हैं। पता नहीं क्या है, तो वहां पर ही भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ये ज्ञानी लोग जो है मायावादी लोग जो है भगवान विष्णु के अर्चन करने की भी स्थापना करते हैं फिर भी वैष्णव नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु से वो एकाकार चाहते हैं, वननेस चाहते हैं, कि मायावाद है, बड़ा खतरनाक सिद्धार्थ है। तो ज्ञान मार्ग में भी भगवान विष्णु की आवश्यकता पड़ती है, नारायण बनने के लिए भी नारायण की आवश्यकता पड़ती है, हालांकि नारायण कभी बन नहीं सकते, जीव कभी नारायण नहीं बन सकता है, भगवान कभी नहीं बन सकता है, लेकिन नारायण बनने के लिए नारायण की आवश्यकता पड़ती है। और अष्टांग योग में तो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाया जाता है जो भगवान विष्णु है। देखिए आप भगवान से बच नहीं सकते, और बड़े बड़े राक्षस कंस और रावण जैसे राक्षस, उनको भी भगवान का चिंतन करना पड़ता है भगवान को मारने के लिए। शिशुपाल जन्म लेते ही बचपन से ही भगवान को गाली दे रहा था, जैसे ही मुंह खोला उसने गाली देना शुरू कर दिया। तो ये जब तक 24 घंटे भगवान का चिंतन ना हो, तब तक तो कोई भगवान को दुश्मन भी नहीं बन सकता। दुश्मन बनने के लिए भी, भगवान का दुश्मन बनने के लिए भी आपको भगवान का चिंतन करना पड़ेगा निरंतर, नहीं तो फिर तो हवा के धोखे से उड़ जाएंगे आप, मच्छर ही काट के मार देगा आपको, मलेरिया से मर जाएंगे। उसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। बोले कि भगवान आ नहीं रहे, क्यों आए भगवान भाई, मच्छर ही काफी आपको मारने के लिए, भगवान को आने की क्या जरूरत है। जब छोटा सा मच्छर डेंगू मार सकता है तो भगवान अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर इस पृथ्वी में क्यों आए, इस पृथ्वी में कब आएंगे, जब आप ऐसे राक्षस बनेंगे जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी मार्ग हो, हम लोग भगवान से बच नहीं सकते। अच्छा, अब यहां पर देखिए क्या है, स्वर्गलोक की बात की जा रही है। स्वर्गलोक में जाना भी पाप ही क्यों है, क्योंकि स्वर्गलोक में तो पुण्य कर्म के आधार पर स्वर्गलोक में सुख भोगने के लिए जाते हैं, और सुख भोगते हैं वहां का ऐश्वर्य भोगते हैं, जिसका कोई संबंध नहीं भगवान से। स्वर्गलोक के सुख में भगवान से कोई संबंध नहीं है, तो हो गया ना पाप। जैसे चेतन चेतावन में एक श्लोक है, उस श्लोक में बताया गया, भक्ति विरोधी कर्म धर्म व अधर्म ताहार कलमश नाम सही महातम। चेतन चेतावन आदि लीला में दिया है, तीसरे अध्याय के 61वें श्लोक में, भक्ति के विरुद्ध जो भी कर्म हो, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, उसे पाप ही समझना चाहिए, और यही घोर अज्ञान है। यानी कि भक्ति रहित कोई भी कार्य हो, देखने में धर्म लग रहा हो या धर्म लग रहा हो, वो सब क्या है, घोर अज्ञानता है, उसको पाप ही समझना। तो आप स्वर्ग भी जा रहे हैं तो स्वर्ग भी जा रहे हैं, वो भी पाप ही है। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि भगवान की बातों को काट रहे हैं, क्योंकि तो भगवान तो बोल रहे हैं अब स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, आप स्वर्गलोक जाओगे नहीं तो साम्राज्य प्राप्त करोगे। तो बेसिकली ये पब्लिसिटी है, ये समय परिस्थिति और काल के अनुसार भगवान जो है या इस तरह का उपदेश दे रहे हैं ताकि अर्जुन कंपनी युद्ध करना प्रारंभ करे। जैसे एक बच्चे को जब दवाई खिलानी होती है तो किसी मीठी चीज में खिला देते, अगर कड़वी दवाई है तो इसी चीज में मिला कर देते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर भगवान जो है स्वर्ग का यहाँ पर वो ऑफर दे रहे हैं, स्वर्ग का ऑफर दे रहे हैं, साम्राज्य का ऑफर दे रहे हैं, यश का ऑफर दे रहे हैं, वो सारे लाभ बता रहे हैं उसे, इसलिए ताकि अर्जुन जो है युद्ध करना प्रारंभ। क्योंकि गुरु का कर्तव्य ऐसे ही होता है कि शिष्य की परिस्थिति को देखकर, शिष्य के स्टेज को देखकर उसको सेवा में लगाते हैं। अगर वो शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहता है तो कम से कम निश्चित भक्ति तो करे, कर्म निश्चित भक्ति कर ले, ज्ञान निश्चित भक्ति कर ले, कुछ तो करे। धन की इच्छा है भक्ति करते हुए, धन की इच्छा है कोई बात नहीं भक्ति करो, धन की इच्छा धन कमाओ हो लेकिन भक्ति करो, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा है भक्ति करते हुए कोई बात नहीं फिर भी करो, फिर भी भक्ति करो। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रे ने भक्ति योगे ने यजे तो पुरुषम पर, भागवत में बताया गया। कामना है या नहीं कामना है, मुक्ति की इच्छा है, कोई भी इच्छा हो फिर भी आपको भगवान की सेवा में लगे रहना। क्यों क्यों लगे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लगे रहने से भगवान आपको शुद्ध करेंगे। लोगों का कार्य की अग्नि में अग्नि के संपर्क में रहे, अब ये सोचा तो व्यक्त होगा कि ये लोहा है क्यों अग्नि के संपर्क में आ रहा है, लोहे को क्यों माना चाहिए संपर्क। लेकिन लोहा जब अग्नि के संपर्क में आएगा लगे रहने से क्या होगा, लोहा जो है वो अग्नि में बदल जाएगा, इसी तरह से कोई भी कारण हो, किसी तरह का भी अनर्थ हो हमारे भीतर, कोई भी कारण हो, किसी तरह का भी स्वार्थ हो, हमें भगवान की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। तो यहाँ पे क्षत्रिय धर्म के बारे में बातें कर रहे हैं भगवान, ऐसा लग रहा है क्षत्रिय धर्म के बारे में बता रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए क्या आवश्यक है, क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, युद्ध भूमि में अगर वो शरीर छोड़ता है तो सब लोग की प्राप्ति होती है, विजय होगा तो साम्राज्य की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पे हार की बात नहीं की है भगवान ने, देखिए भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि हाँ तुम युद्ध भूमि में हार जाओगे तो वही ये प्राप्त हो, देखिए एंकरेज कर रहे हैं भगवान। तो ये वास्तव में गुरु का कर्तव्य होता है कि वे नहीं वो पता लगाते हैं कि गुरु पता लगाते हैं किस तरह के शिष्य को भगवान की सेवा में लगाया रखे सौर्द है ना, ये न के उपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी ना किसी उपाय से किसी ना किसी तरीके से लगे रहना चाहिए भगवान की सेवा। तो यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है, जब यहाँ पर बताया जा रहा है पाप के बारे में बताया जा रहा है तो देखा जाए तो स्वर्ग लोक में जाना भी जो है वो भी एक तरह से पाप का ही कार्य है, क्योंकि वहां पर भी भगवान की सेवा नहीं होती है। और अगर स्वर्गलोक प्राप्त भी हो जाएगा अर्जुन को, साम्राज्य भी प्राप्त हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो पाप भाग भी रहेगा, ऐसा नहीं कि साम्राज्य प्राप्त होगा तो वहां पाप ही नहीं लगेगा बिल्कुल नहीं, तो पाप तो वहां पर भी लग सकता है, पाप ही भी हो सकता है कि उनका मन भटक जाए भगवान की सेवा में ना लगे। तो कहने का अर्थ यह है कि विरुद्ध कर्म कोई भी हो, साम्राज्य प्राप्त करके हो या स्वर्गलोक प्राप्त करके हो, अगर वो विरुद्ध कर्म है, अगर भगवान की सेवा उसमें नहीं है तो वो सारा पाप करे, ये स्पष्ट है, इसमें कोई संशय नहीं। तो कहने का अर्थ यह है क्या ये बताया जा रहा है कि यानी कि कृष्ण के विरुद्ध के कोई कर्म करता है, कृष्ण से विरुद्ध होकर कोई कर्म करता है, या कृष्ण से विरुद्ध होकर कोई इंद्र तृप्ति में लगता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, ये सारा पाप का है। तो कहने का अर्थ ये है कि वैकुंठ धाम जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए हमें इस तरह के पाप और इस तरह के पुण्य दोनों से छुटकारा था, यानी कि जो भगवान जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, वो कार्य हमें करना है, तब हम लोग जो है इस प्रकार विरक्त हो जाएंगे, लाभ और हानि से विरक्त हो जाएंगे, सुख और दुख से विरक्त हो जाएंगे, जय और पराजय से विरक्त हो जाएंगे, फिर हमें चिंता नहीं होगी कि क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, इससे मेरा क्या फायदा, मैं ये सेवा कर रहा हूं उससे मेरा क्या लाभ है, सोचते ना कई बार हम लोग मेरा क्या फायदा मैं सेवा करूं तो है, लेकिन फायदा क्या है कि हमारा तो फायदा ही है, हमारा ही फायदा है, हम अगर सेवा करते हैं भगवान की तो इसमें कृष्ण का फायदा नहीं है, हम मंदिर आ रहे हैं जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए, इसका मतलब ये ना सोचें हम जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे भोग तैयार कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को भूख लगी है हमारे खिलाने से ही उनका भूख शांत होगा, इसलिए हम घर से नाना प्रकार के व्यंजन बना के लाए ताकि उनकी भूख मिट जाए, ये भावना शुद्ध भक्ति की नहीं होगी, है कि नहीं। तो हमें तो ये देखना है कि जगन्नाथ जी को खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का ही है, लेकिन अगर हम कुछ भोग लगाते हैं जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए तो इसमें हमारी प्रसन्नता है, यानी कि हमारा लाभ है, हमारे बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हम लोग जो है जगन्नाथ जी को भोग लगा रहे हैं। अब सूर्य को अगर आप एक मोमबत्ती दिखा दो तो सूर्य को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप सूर्य को मोमबत्ती दिखाते हैं तो भेंट के रूप में सूर्यदेव में आपको स्वीकार करेंगे आपकी भेंट, सूर्य नमस्कार लोग जब करते हैं तो सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं लोग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं, सूर्य की प्रसन्नता के लिए, सूर्य का स्वास्थ्य क्या खराब है, आपका कहीं पावर कम ना हो जाए इसलिए हमको नमस्कार करते हैं, ऐसा होता है, तो सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हम अपनी प्रसन्नता के लिए या अपने लाभ के लिए अपने बेनिफिट के लिए हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, इसी तरह से भगवान को प्रणाम किया जाता है, अपने बेनिफिट के लिए किया जाता है ना कि भगवान के बेनिफिट के लिए। तो इस तरह से जो है इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है, क्या बोल रहे हैं भगवान, अर्थात तुम सुख या दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगता। तो कहने का अर्थ है कि कोई ना हर्षित होने की आवश्यकता है, ना उद्विग्न होने की आवश्यकता है। युद्ध करने के लिए युद्ध करो, युद्ध में लग जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। व्यर्थ चिंता मत करो कि क्या होगा भविष्य में, लाभ हानि की चिंता मत करो, प्रॉफिट की चिंता मत करो, कल क्या होगा, परिवार के साथ क्या होगा, रिश्तेदारों के साथ क्या होगा, भय का सारा उत्पन्न हुआ है। ये देहात्म बुद्धि के कारण होता है। जब देहात्म बुद्धि होते हैं, देहात्म बुद्धि में होते हैं, हमें भय उत्पन्न हो जाता, बहुत सारे भय होते हैं, और इस कारण से जो हमारी सेवाओं को जो है टालते रहते हैं। एक अयोग्य शिष्य का एक लक्षण ये भी है कि हर सेवा को जो है टालता रहता है। उन्होंने मगुरु महाराज में आगे दी 10 साल पहले, वो 10 साल तक अभी सेवा नहीं कर पाए। हम टालते जा रहे हैं, शुभ मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, अपने नक्षत्र देख रहे हैं, कोई शुभ मुहूर्त आए जब हम सेवा प्रारंभ करेंगे, ताकि हमें कोई कष्ट ना हो सेवा करते हुए। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो इसलिए नजर आते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा सारा समर्पण गुरु में है ही नहीं, कमी है यानी श्रद्धा की। क्या श्रद्धा होती है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी ने बस यही विचार किया कि मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, मैं जा रहा हूं अमेरिका। प्रभुपाद जी ये सोच के नहीं गए अमेरिका में जाके बहुत सक्सेस मिलेगा मुझे, और ऐसी कोई जगह में जाके नहीं रहे जहां पर बहुत सक्सेस मिल जाए। प्रभुपाद ऐसी जगह जाके रहे जहां कोई सोच ही नहीं सकता रहेंगे, ऐसी जगह में जाके प्रभुपाद को रहना पड़ा क्योंकि प्रभुपाद को उनको घर नहीं था, प्रभुपाद प्रैक्टिकली पैनलिस्ट थे। तो वहां जाके प्रभुपाद ने जय और पराजय की चिंता नहीं की, लाभ और हानि की चिंता नहीं की, सुख और दुख की चिंता नहीं की। प्रभुपाद ने ये सोचा कि मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, मुझे करना है, और क्योंकि प्रभुपाद ऐसा करते रहे बिना हर्षित हुए, बिना उद्विग्न हुए, गुरु की प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करते रहे, तो प्रभुपाद जी को लाभ ही लाभ हुआ, लाभ ही लाभ हुआ। कष्ट बहुत सारे आए लेकिन अंततः प्रभुपाद जी सफल हुए। तो ये होता है कि जब हम निर्भीक होकर, समर्पित होकर गुरु की प्रसन्नता के लिए श्रद्धा से लगे रहते हैं, तो फिर हम लोग जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं। इसे हम सबको लगे रहना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए क्या फायदा हम जप कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भक्ति ऐसी चीज है कि एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता। जब आप बाहर की दुनिया में क्या करेंगे, क्या कुछ भी करेंगे तो लगेगा 1 साल में 2 साल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है कि नहीं? टाइम बाउंड होता है सब कुछ, टारगेट्स होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ता है। आज जितने एजेंसीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पे आपको टारगेट दिए जाते हैं, आपको रिजल्ट बेस्ड जॉब करना पड़ता है। आप रिजल्ट शो नहीं करेंगे तो छुट्टी हो जाएगी आपकी, बात सही कि नहीं? आप लोग जानते हैं, आप सबको एक्सपीरियंस है उसका। तो एक रिजल्ट बेस्ड सोसाइटी है, टारगेट बेस्ड सोसाइटी है। तो भक्ति में भी जब आते हैं हम लोग तो ये सोचते हैं कि 5 साल हो गए हमें, 10 साल हो गए, 16 माला कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लगता प्रोसेस ही गलत है, मैं छोड़ रहा हूं। हम सब इंस्टेंट बेनिफिट चाहते हैं, जैसे बाहर के संसार में हम चाहते हैं इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, है ना, पिज्जा हट, सब कुछ इंस्टेंट फूड, सब कुछ इंस्टेंट मिल रहा है। और यहाँ भी भक्ति में चाहिए इंस्टेंट भक्ति। 2 साल हो गए माला करते हुए, पता नहीं क्या हो रहा है, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भटकते रहे हैं 84 लाख योनियों में, इंद्रतृप्ति में लगे रहे हैं, और 2 साल में हमें चाहिए कृष्ण प्रेम, इतना भी सस्ता नहीं है। तो इसके लिए बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, उत्साह, निष्ठा, धैर्य, एंथुसियाज्म, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, श्रीगुरु गोस्वामी कह रहे हैं। उत्साह भी होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए, साथ में धैर्य भी होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को लगे रहना पड़ेगा, भले ही हमें सक्सेस मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, कष्ट आए या ना आए, हम लोग भक्ति में लगे रहना। तो इस तरह से भक्त जीवन के अंतकाल से लगे रहते हैं, फिर भगवान हमारी सहायता करते हैं, तो तब योगक्षेम महान ज्ञान हो जाता है। योगक्षेम महान का मतलब है जो कमी है उस कमी को भगवान पूरा करते हैं, और जितनी भक्ति हमने की है इतने सालों में उस भक्ति की रक्षा करते हैं, वो भक्ति की रक्षा करते हैं भगवान, ये असली इंश्योरेंस पॉलिसी। और जो कमी रह गई भक्ति में उस कमी को पूरा कर देंगे भगवान, अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी भगवत कृपा। ये हमें समझ के चलना है कि हमारा प्रयास जो है वो निरंतर होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। माया बहुत प्रभावशाली है, माया बहुत परीक्षा लेगी हम सब की, माया छोड़ेगी नहीं हमें। जहां भी हम लोग हल्के फुल्के हुए, ढीले हो गए, वहां माया घिर रही है। माया जो देखेगी आप किसी की सेवा ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी लेक्चर में कि कृष्णा माया सी दैट नोबडी शुड डिस्टर्ब कृष्णा। माया का कार्य किया है देखना कि कोई कृष्ण को परेशान न करे फालतू में, तो इसलिए थोड़ा सा भी परेशान करता है अगर ठीक से भक्ति नहीं कर रहा कोई, तो फिर माया डिस्टर्ब करेगी, माया उसको डिस्टर्ब करेगी ताकि वो डिस्टर्ब ना करे कृष्ण को। तो इसलिए माया से बचे रहने के लिए हमें प्रोसेस में लगे रहना है और सेवा में लगे रहना है, खाली नहीं रहना है, अपने को बेस्ट रखना है भगवान की सेवा में, तब जाके हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आपके वजह से? मेटीरियल डिजायर के साथ बहुत ही इच्छाएं हैं अभी वहां। हाँ भगवान तो हमारी भी रक्षा कर रहे, आपकी भी रक्षा कर रहे। जो भी भक्त है वो मिश्रित हो या शुद्ध भक्त हो, भगवान सबकी रक्षा कर रहे। भगवान तो चीटी की भी रक्षा कर रहे हैं जो भक्त नहीं है, पशु पक्षियों की भी रक्षा कर रहे हैं, भगवान तो सबकी रक्षा कर रहे। लेकिन भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। देवताओं की रक्षा करते हैं भगवान, तो हमें भक्ति करना, भक्ति है, भक्ति करना मुश्किल है। जैसे इंडिया में भक्ति करना आसान है, अमेरिका में मुश्किल है। आप समझ जाइए, अमेरिका जाएंगे तो यहां की तरह थोड़ा है, गंगा जमुना सरस्वती कहां है वहां, जगन्नाथपुरी मायापुर सीधा वृंदावन ये सब कहा है अमेरिका में? नर्क है वो तो 101%, वो तो पॉलिश हेल है, सोफिस्टिकेटेड हेल है। तो लोग जा रहे हैं वहां। प्रभुपाद जब इंग्लैंड गए थे तो चारों तरफ बहुत ग्रीनरी थी, तो प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी कैन यू डिस्क्राइब हेल? प्रभुपाद ने कहा दिस इज हेल, लंडन इज हेल। प्रभुपाद के लंडन ही नरक है। बोलते क्यों? कि 6 महीने देखे बादल रहते हैं, सूरज नहीं निकलते हैं, ये हेल नहीं तो गया। प्रभुपाद से कहते हैं सो सो ग्रीनरी इज देयर, सो मेनी ट्रीज अराउंड, है ना, कितने सारे पेड़ पौधे यहाँ पे, हरियाली है चारों तरफ, इतना अच्छा वातावरण है। प्रभुपाद ने यस दिस इज ग्रीन हेल। प्रभुपाद बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थे वैसे वहां के ऑपुलेंस को देखकर। ये प्रभुपाद जी का प्रेम है भगवान से, प्रभुपाद जी का विशेष प्रेम है भगवान से, इसलिए कितना भी ऐश्वर्य को दिखाया जाए प्रभुपाद जी किसी भी ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होते। प्रभुपाद जी तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो फिर भौतिक जगत के ऐश्वर्य से कैसे प्रभावित हो जाए? क्योंकि वो वृंदावन के भक्त हैं। जो वृंदावन के भक्त हैं वो तो वैकुंठ धाम के द्वारका के ऐश्वर्य से भी प्रभावित नहीं होते। ये भौतिक जगत का ऐश्वर्य तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है एकदम, टूटते हैं देवी देवता तक यहां टूटते हैं इस भौतिक संसार के, इस पृथ्वी के ऐश्वर्य को देखकर देवता लोग भी टूटते हैं। और सब लोग का ऐश्वर्य देख लिया तो शायद हमें से बहुत कम लोग बैठे होंगे यहां पर, इतना ऐश्वर्य वहां। लेकिन प्रभुपाद जी को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है भौतिक जगत के नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद्भगवद्गीता यथारोह की सर्वे भक्त वृंद की बहुत प्रेमानंदे।
Hare Krishna, जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नित्ताई गौरांगो नित्ताई गौरांगो नित्ताई गौरांगो नित्ताई गौरांगो नित्ताई गौरांगो गौरहरी गौरा 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 हरी नित्याय गौरांगो नित्याय गौरांगो नित्याय गौरांगो नित्याय गौरांगो नित्याय गौरांगो नित्याय गौरांगो जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन गौर हरे गौरा गौरा